जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी। तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
प्रिय कृष्णा, हमारे मंदिर के भक्त थोड़े ही दिन पहले प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग से लौट कर आए और वहां से बहुत अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए और भक्तों का यहां उत्साह बढ़ाया। वहां कैसे शानदार उत्सव चल रहा है कुंभ मेला का और वहां हरे कृष्ण के भक्त किस तरह से अच्छा प्रचार कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं। और अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा कुंभ मेला का विवरण, तो आज हम कुंभ मेला के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंभ मेला क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, महात्म्य क्या है। वैसे एक घंटे में ये करना कठिन है क्योंकि इसका इतिहास भी बहुत पुराना है, प्राचीन है, और लंबा भी है, लेकिन फिर भी संक्षेप में इस विषय के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कुंभ मेला का इतिहास हजारों करोड़ों साल पहले तक जाता है, यहां तक कि इस मन्वंतर के पिछले मन्वंतर से ये कथा शुरू होती है। जैसे आपको पता होगा, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, उनके हर एक दिवस में 14 मनु होते हैं, और ये मनु से ये शब्द मनुष्य आता है। हर एक दिवस में 14 मनु, और ब्रह्मा जी के इस दिवस में ये सातवां मन्वंतर चल रहा है, सातवें मनु का राज चल रहा है। इस मनु को वैवस्वत मनु कहते हैं, जो सूर्य देव के पुत्र हैं। और छठे मन्वंतर की ये कथा है, पिछले मन्वंतर की। उस मनु का नाम था चाक्षुष मनु। तो चाक्षुष मन्वंतर में असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ, जैसे कि अक्सर हुआ करता है। हमेशा ये दो दल विरोधी दल होते हैं। एक बार ऐसे हुआ कि दुर्वासा मुनि, जो कि बहुत शक्तिशाली प्रभावशाली योगी हैं, वो स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र के राजधानी अमरावती में पहुंचे, और वहां पर इंद्र एक यात्रा में निकले हुए थे अपने राजधानी में, हाथी के ऊपर सवार होकर। उनके हाथी विशाल हाथी था, और उसके ऊपर आराम करते हुए इंद्र इधर उधर जा रहे थे। दुर्वासा मुनि ने जब इंद्र को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। दुर्वासा मुनि के गले में एक फूलों का हार था, और ये फूल ऐसे फूल थे जो कभी भी मुरझाते नहीं थे, बिना न मुरझने वाले फूल। तो ये हाल जो है दुर्वासा मुनि ने इंद्र को दी भेंट में। उस समय इंद्र के हृदय में बड़ा घमंड था कि मैं देवराज हूं, स्वर्ग का स्वामी हूं, तो वो हार का सही तरह से सम्मान नहीं किया और अपने हाथी के सूंड पर चढ़ा दिया। हाथी आखिर पशु होता है, उसको कम बुद्धि होती है, तो उसे पता नहीं चला कि किस तरह से ये हार का सम्मान करना चाहिए, ये हार का महत्व क्या है। उसने उस हार को अपने पैरों के तले डाल के कुचल दिया। जब ये देखा दुर्वासा मुनि ने तो बड़े क्रोधित हो गए। वैसे भी दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधी मुनि ऐसे जाने जाते हैं, क्योंकि वो भगवान शिव जी के अंश माने जाते हैं। शिव जी जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनका नाम है आशुतोष, उतने ही जल्दी वे क्रोधित भी हो जाते हैं, और दुर्वासा मुनि उनके अंश अवतार हैं, इसलिए बड़े जल्दी क्रोधित हो गए, और उन्होंने सारे देवताओं के ऊपर एक श्राप दी। और वो श्राप था कि क्योंकि तुम लोगों के अंदर इतना घमंड है, तुम्हारा ऐश्वर्य बहुत जल्दी क्षीण हो जाएगा। तो बड़े दुख से देवताओं ने यह श्राप सुना, लेकिन कुछ और करने की संभावना नहीं थी, और इस तरह से उनके सारे ऐश्वर्य क्षीण हो गए। और असुरों ने ये मौके का फायदा उठाया, आक्रमण किया देवलोक पर, और वहां भयंकर युद्ध हुआ। और असुरों के सेनापति थे बलि महाराज, प्रहलाद महाराज के पोते, हिरण्यकश्यप के वंशज, असुरों के राजा थे वो। और युद्ध कई दिन तक चला, लेकिन क्योंकि देवताओं की शक्ति कम हो गई थी, क्षीण हो गई थी, वो असुरों का सामना नहीं कर पाए, हार गए। और ऐसे पराजित अवस्था में दौड़ते हुए सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास आ गए, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक तो सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्थित है, तो सुमेरु पर्वत के शिखर पर जाकर ब्रह्मा जी से अपनी वेदनाओं का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी इस समस्या का हल नहीं कुछ कर सकता, हमें विष्णु के पास जाना होगा। तो देवताओं के साथ ब्रह्मा जी श्वेत द्वीप में गए, क्षीर सागर के तट पर स्थित होकर पुरुष सूक्त प्रार्थना का उच्चारण करने लगे जैसे हर बार करते हैं। और थोड़ी देर बाद विष्णु की आवाज सुनाई पड़ी, बड़े गंभीर आवाज, बादल के गरजने की तरह एक आवाज थी। और विष्णु ने घोषणा की कि हे देवतागण, डरो नहीं, अभी काल तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। ऐसे पराजित अवस्था में आपको साहस खोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति शांति से और धीरज से ऐसे अवस्था में अपने जीवन को चलाता है वो अंत में सफल हो जाता है। अभी आपको ये चाहिए कि असुरों के साथ में एक समझौता करें, नम्र होकर उनके सामने झुको। कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए भी शत्रु के सामने झुकना पड़ता है, यह संसार की रीति है। इसलिए उनके पास जाओ, एक समझौता करो और ये प्रस्ताव रखो कि देवता और असुरगण दोनों मिलकर क्षीर सागर में मंथन करेंगे और इस मंथन से जो अमृत आएगा उस अमृत का पान दोनों करेंगे, देवता और असुर। तो जो भी वनस्पति, लताएं, औषधियां हैं इस क्षीर सागर में डालो और मंथन करना आरंभ करो। सर्प मुषिक न्याय स्वीकार करो और इस तरह से तुम सफल हो जाओगे। अब यह सर्प मुषिक न्याय क्या चीज है? सांप और चूहे का न्याय। एक बार ऐसा हुआ कि एक टोकरी के भीतर एक सांप और चूहा दोनों अटक गए, दोनों बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब चूहे के बड़े दांत होते हैं, बड़े तेज दांत होते हैं जिससे वो टोकरी को काट के बाहर निकल सकता है, सांप ऐसे नहीं कर सकता। अब वैसे चूहा जो है वो सांप का भोजन है, तो सांप विचार करने लगा कि ये तो मेरा भोजन है, मुझे बहुत इच्छा हो रही है कि इसको खा डालूं, लेकिन अगर मैं इसको खा डालूंगा तो मैं इस टोकरी के बाहर कैसे निकलूंगा, उसकी तो मृत्यु होगी साथ साथ मेरी भी मृत्यु होगी। तो मुझे ऐसा चाल चलाना होगा कि मैं इस चूहे का इस्तेमाल करूं इस टोकरी में छेद करने के लिए, और जैसे ही वो छेद कर लेगा उसे खा जाऊंगा और निकल भी जाऊंगा, तो मुझे भोजन भी मिल जाएगा और टोकरी से मुक्त भी हो जाऊंगा। तो उसने चूहे से कहा, अरे मेरे मित्र चूहे, देखो हम दोनों यहां अटक गए हैं, तो तुम्हारे दांत बड़े तेज हैं, धार वाले हैं, तो कृपा करके इस टोकरी को काट डालो, छेद करो और फिर हम दोनों बाहर निकलेंगे, हम दोनों मुक्त हो जाएंगे। चूहे ने सोचा अभी कम से कम थोड़ी तो संभावना है सांप से बचने के लिए, तो चूहे ने काटना शुरू कर दिया और छेद किया। जैसे ही छेद कर दिया तो सांप ने उसे खा डाला और फिर खाकर बाहर निकल गया। तो ये है सर्प मुषिक न्याय, सांप और चूहे का न्याय। भगवान विष्णु देवताओं का हित चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि असुर उस अमृत का पान करें, लेकिन फिर भी समय ऐसा था, काल देवताओं के विरुद्ध था, इसलिए कोई ऐसे तरकीब सोचनी पड़ी भगवान विष्णु को। तो उन्होंने कहा कि पहले आप ये अमृत का उत्पादन करो सागर से, और फिर मैं मेरी माया शक्ति के द्वारा असुरों को मोहित कर दूंगा, चिंता नहीं करो। तो इस तरह से विष्णु के आदेश के अनुसार देवतागण असुरों के पास गए और बड़े नम्रता से मीठे शब्दों में उनको शांत किया और शांति का प्रस्ताव रखा और कहा कि आइए हम दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें और अमृत का पान करें। तो अमृत का नाम सुनकर असुर भी इच्छुक हो गए इसका पान करने के लिए। कौन है जो अमृत नहीं होना चाहता है, कौन है जो मृत्यु का पार नहीं करना चाहता, सभी लोग लंबे समय जीकर आनंद भोगना चाहते हैं। तो जैसे विष्णु भगवान ने आदेश दिया था वो मंदर पर्वत के पास गए, मंदर आंचल जो कि सोने का बना हुआ है। हाँ, ऐसे ब्रह्मांड में ऐसे पर्वत भी होते हैं जो शुद्ध सोने के बने हुए होते हैं। कल्पना कीजिए अगर ऐसा पर्वत यहां होता तो क्या परिस्थिति हो जाती। तो खैर देवी देवतागण और असुरगण दोनों वहां गए, बड़े शक्तिशाली थे दोनों देवता और असुर, तो अपने मजबूत भुजाओं से मंदर पर्वत उठाया और बहुत लंबा उन्हें चलना पड़ा क्योंकि क्षीर सागर बड़ा काफी दूर था मंदराचल से। तो उस मंदर पर्वत को उठाते उठाते थक गए, बहुत वजनदार था ये, और एक बार चलते चलते ऐसे हो गया कि उसका बोझ उठा नहीं पाए और वो पर्वत गिर गया और नीचे बहुत सारे असुर और देवता मर गए। तो बड़े निराश हो गए सारे बाकी जो देवता और असुर थे। तो ये परिस्थिति को देखकर स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर वहां आए और अपने दृष्टि मात्र से इन देवताओं को और असुरों को पुनः जीवित कर दिया और फिर आसानी से उस मंदर पर्वत को उठाकर गरुड़ के पीठ पर रख दिया और खुद भी वो गरुड़ के ऊपर सवार हुए और क्षीर सागर की ओर चले और वहां पर सागर में दूध के सागर में इस मंदर पर्वत को रख दिया। और देवताओं ने वसुकी सांप को, जो सांपों का सर्पों का राजा है नागराज, उसे निवेदन किया कि आप ये मंथन के लिए एक रस्सी बन जाओ, इस मंदर पर्वत से मंथन करने वाले हैं और तुम्हें लपेटेंगे इस पर्वत में, तो आप इसमें रस्सी बन जाओ और अमृत का हिस्सा आपको भी देंगे। तो जब यह सुना वसुकी ने तो वसुकी भी तैयार हो गए, लेकिन वसुकी थोड़ा घबरा रहे थे क्योंकि पास में गरुड़ जी थे, क्योंकि गरुड़ जी का भोजन है सांप, जिस तरह से सांप का भोजन है चूहा तो गरुड़ का भोजन है सांप। तो वसुकी ने इशारा किया कि जब तक ये हैं तो हमें यहां रहना मुश्किल है। तो फिर देवताओं ने गरुड़ जी से कहा कृपा करके आप चले जाइए, नहीं तो हमारा अमृत नहीं मिल पाएगा हमें। तो वसुकी तैयार हुए और इस समय इस समुद्र मंथन के जब आरंभ होने वाला था तो भगवान विष्णु ने एक सुंदर अवतार लिया और वो अवतार का नाम था अजित। बड़े सुंदर रूप में प्रकट हुए और उन्होंने वसुकी सांप के मुख का जो हिस्सा है वो पकड़ लिया और साथ साथ में सारे देवता भी उनके पीछे आए। अब जो मुख होता है वो शुभ माना जाता है और जो पूंछ होता है वो अशुभ माना जाता है। तो असुर सोच रहे थे कि इन्होंने शुभ हिस्सा जो है वो ले लिया, हमारे लिए अशुभ हिस्सा छोड़ दिया, तो ये हमें मंजूर नहीं है। तो तुरंत असुरों ने कहा कि हमें वो हिस्सा चाहिए, भगवान विष्णु इसी के लिए इंतजार कर रहे थे। तो कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल आइए। तो असुरगण जो है वसुकी के मुख का हिस्सा पकड़ने लगे और सारे देवतागण पूंछ की ओर गए और फिर वहां से मंथन शुरू हो गया। और मंथन जैसे चल रहा था, हालांकि भगवान श्री अजित के रूप में भी मंथन में शामिल हुए थे, फिर भी मंदर पर्वत इतना भारी था कि वो नीचे डूबने लगा क्षीर सागर में, और डूबते डूबते कोई कुछ नहीं कर पाया उसे, सारे निराश हो गए। उस समय भगवान ने देखा कि ऐसी परिस्थिति है तो क्या करना चाहिए, तो तुरंत उन्होंने एक अद्भुत अवतार लिया। कौन सा अवतार था? कूर्म अवतार। कूर्म अवतार, कूर्म का रूप धारण किया और नीचे सागर के तट पर वो गए, सागर के नीचे जमीन पर गए और अपने पीठ पर उन्होंने मंदर पर्वत को स्वीकार किया, धारण किया। और ऐसे भागवत में वर्णन है कि वो आधे निद्रा में थे, आराम से सोए हुए थे वो, और जब मंथन चल रहा था उनके ऊपर मंदर पर्वत इधर उधर यूं घूम रहा था तो उनको ऐसे लग रहा था कि पीठ पर कोई खुजली कर रहे हैं, तो उनको बड़ा आराम महसूस हो रहा था। जैसे हम कभी सोते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई आकर हमारे मालिश करे, कोई खुजली करे, हम आधे नींद में होते हैं। तो इस तरह से ये इतना भारी पर्वत जो देवतागण और असुरगण मिलाकर उठा नहीं पाए और जो अभी भगवान कूर्म के पीठ पर था, कूर्म भगवान को कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुई, उनको आराम लग रहा था, बहुत मसाज मालिश हो रहा था उनको उनके पीठ के ऊपर, जैसे कोई खुल खिजली हो रही है। और इस तरह से कूर्म भगवान तैर रहे थे दूध के सागर में। अब जैसे और मंथन आगे चला बहुत लंबे समय तक चला लेकिन कुछ निकला नहीं। और क्योंकि मंदरा पर्वत केवल नीचे से इसका आधार था लेकिन ऊपर इधर उधर से खींच रहे थे तो ऊपर से वो बैलेंस नहीं हो पा रहा था, इधर उधर घूम रहा था जैसे भौरा होता है, बच्चे लोग खेलते हैं भौरे से। तो उसी तरह से तो भगवान ने और एक अवतार लिया जिसमें सहस्र भुजाएं थे उनकी, और उस पर्वत के ऊपर जाके बैठ गए मंदर पर्वत के। अभी बिल्कुल बैलेंस हो गया, अभी मंदर पर्वत हिल नहीं रहा था, बिल्कुल एक जगह स्थित हो गया। और बड़े उत्साह से और जोरों से देवतागण और असुरगण फिर से मंथन करने लगे लेकिन फिर भी कुछ नहीं आ रहा। और इस समय वसुकी के फणों से आग और धुआं आने लगा क्योंकि वसुकी भी बहुत थके हुए जा रहे थे, इतना थक गए थे कि प्राय मर चुके थे, थोड़ा सा प्राण रह गया था। तो अपने फणों से विष और वगैरह आ रहा था और ये सारा सब असुरों के ऊपर आ रहा था। इसलिए विष्णु बड़े चतुर थे, वो मालूम था कि जो वो करेंगे पहले वो असुर चाहेंगे, तो जानबूझकर इस तरफ आए थे। तो असुरों के ऊपर वसुकी का पूरा आग और धुआं आ रहा था लेकिन वसुकी से निकलने वाला जो धुआं था, आग था, इतना प्रबल था, इतना जहरीला था कि उस कोने में स्थित देवतागण को वो भी जल गए। दोनों थक रहे थे, बहुत थक रहे थे, अब मंथन नहीं किया जा रहा था, किसी न किसी तरह से किए जा रहे थे। और फिर अचानक इस मंथन से उस सागर में से एक जहरीला पदार्थ निकला, विष, इसको हालाहल कहते हैं। और जब हालाहल आए तो सभी घबरा गए। शिवजी थे वहां, बड़े कृपालु हैं, सारे ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए आतुर रहते हैं। तो शिवजी आए और केवल अपने हस्ती में उन्होंने इस सारे विष को लिया और विष का पान कर दिया, और इस विष का पान करके अपने कंठ में रख दिया जिसकी वजह से उनका कंठ जो है नीला रंग का हो गया, इसलिए शिवजी का नाम है नीलकंठ। शिवजी ने यहीं तक धारण किया। शिवरात्रि के दिन कई शिवजी के भक्त होते हैं जो ये बताते हैं कि शिवजी भांग गांजा पिया करते हैं, हम उनके भक्त हैं तो हम भी भांग और गांजा पिएंगे। बंबई में हमारे गोपीनाथ मंदिर के सामने ही बाबुलनाथ मंदिर है, तो शिवरात्रि के दिन सड़क पर आप ऐसे बहुत साधुओं को देखेंगे बैठ के कोई ना कोई ऐसे नशीले पदार्थ का सेवन करते हुए, लेकिन ऐसे नकल नहीं कर सकते। अगर शिवजी की तरह उनको कुछ करना है तो उनको विषपान करना होगा और गले में कंठ में रखना होगा। अगर कोई एक बूंद विष ग्रहण कर ले, सेवन कर ले, तो वो तो मर ही जाएगा। लेकिन शिवजी ने क्षीर सागर से उत्पन्न हो इतना सारा एक विष का सागर को पहले छोटा करके उसे केवल कंठ में धारण कर लिया। लेकिन जब शिवजी ऐसे यूं पान कर रहे थे तो उनकी उंगलियों के बीच में से थोड़े बूंद नीचे गिरे, इधर उधर अलग अलग ग्रहों में, लोकों में गिर पड़ा। और ये बूंद, विष के बूंद से जो भी यहां हम संसार में जहरीले सांप, जहरीले जो भी पशु हैं, वो उनका विष वहां से आता है, जैसे सांप होता है और फिर वो स्कॉर्पियन बिच्छू होता है, इनका विष ये हालाहल से आता है, तब की बात है, चाक्षुष मनवंतर से इसका इतिहास है। तो इनके अंदर भी ये विष आ गया और ये जहरीले बन गए। तो खैर जब शिवजी ने ये समस्या दूर कर दी तो देवता और असुरों का साहस बढ़ गया और मंथन करने लगे और मंथन करने लगे। और धीरे धीरे से अलग अलग तरह से एक के बाद एक अद्भुत वस्तुएं उत्पन्न होने लगी उस क्षीर सागर से। सबसे पहले एक गाय वहां से आई, सुंदर गाय, सफेद, इसका नाम था सुरभि। यह सुरभि गाय जितना चाहे उतना दूध दे सकती थी। तो जो वहां ऋषि मुनि थे उन्होंने उस गाय को स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें उस गाय से दूध चाहिए था, क्योंकि दूध से उन्हें घी बनाना था जिस घी को वो अपने यज्ञों में इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद में एक घोड़ा आया जिसका नाम था उच्चैश्रवा। उच्चैश्रवा ये सुंदर घोड़ा था तो इसको बलि महाराज ने ले लिया क्योंकि वो असुरों के राजा थे। और विष्णु भगवान ने देवताओं को कह दिया था पहले ही कि देखो जो भी इस समुद्र से उत्पन्न होगा उसके बारे में लालची मत बनना, झगड़ा मत करना, कोई आसक्ति मत रखना, अगर असुर कुछ लेना चाहे उनको लेने दो। तो जब बलि महाराज ने यह घोड़ा ले लिया तो इंद्रदेव और इतर देव अन्य देवताओं ने कुछ कहा नहीं। उसके बाद में एक विशाल हाथी आया जिसका नाम था ऐरावत, और ऐरावत हाथी को स्वीकार किया इंद्र ने और वो इंद्र का वाहन बन गया। उसके बाद आठ हाथी आए, हथनी आए आठ, और इस तरह से एक के बाद एक कई वस्तुएं आई, जैसे कि पांचजन्य शंख जो कि भगवान का शंख है, उसके बाद में कौस्तुभ मणि, फिर विष्णु भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया और अपने वक्षस्थल पर लगा दिया, और उसके बाद में हरिधानु नाम का एक धनुष आया, हरि का धनुष, और उसके बाद में एक पारिजात पुष्प आया, उसके बाद में अप्सरागण आए जो कि सारे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्त्रियां हैं जो कि स्वर्गलोक में रहती हैं, और उसके बाद में लक्ष्मी देवी साक्षात प्रकट हुई उस क्षीर सागर से। जब लक्ष्मी देवी आई तो सारे ऋषि मुनियों ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी तो एक वर के लिए ढूंढ रही थी, मेरा वर कौन हो जाए, कोई योग्य व्यक्ति नहीं पाया, लेकिन विष्णु भगवान की ओर देखा और फिर विष्णु भगवान के गले में हार डाल दिया और उनको पति के रूप में स्वीकार कर दिया। तो सारे देवतागण बड़े प्रसन्न हुए कि लक्ष्मी नारायण की जोड़ी यहां फिर से बन गई, और विष्णु भगवान ने उनको अपने वक्षस्थल में एक जगह स्थान दे दिया, और वो स्थान का नाम क्या है, क्या कहते हैं, श्रीवत्स। तो इस तरह से भगवान विष्णु के वक्षस्थल में श्रीवत्स भी है और कौस्तुभ मणि भी है। और आखिर में एक बहुत ही प्रकाशमान सुंदर युवक वहां से उत्पन्न हुए जो साक्षात भगवान के अवतार थे, जिनका नाम था धन्वंतरी। धन्वंतरी इनसे ये आयुर्वेद ये ज्ञान आता है, और उनके हाथों में एक कुंभ था, मटका बहुत सुंदर। स्वयं धन्वंतरी जी बहुत सुंदर लग रहे थे, नाना प्रकार के आभूषण, उनका सांवला रंग था, पीतांबर था, और ऐसे खड़े हुए थे, और वो कुंभ में अमृत भरा हुआ था, और इस समय तक देवताओं में और असुरों में कोई झगड़ा हुआ नहीं था, शांति से सब लोग मंथन कर रहे थे, बहुत थके हुए थे, कोई शक्ति देवी नहीं थी झगड़ा करने के लिए, जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा था धीरे धीरे एक न एक कोई स्वीकार करते जा रहे थे। लेकिन जब धन्वंतरी प्रकट हुए और उनके हाथ में ये अमृत का कुंभ था तो तब सारी शांति भंग हो गई, सारे असुर उस पर टूट पड़े और छीन लिया धन्वंतरी के हाथों से, करकमलों से वो कुंभ छीन कर आपस में झगड़ा करने लगे असुर लोग, ये मैं पीऊंगा, नहीं तुम नहीं पियोगे, पहला नंबर मेरा है तुम्हारा नहीं है। यही असुरी प्रवृत्ति होती है, असुरी प्रवृत्ति यह है कि हर चीज को भोगना वो पहला चाहते हैं, इसलिए असुरों के बीच में असुरी समाज में कभी भी शांति नहीं हो सकती, एक दूसरे को काट के खत्म कर देते हैं। उसी तरह से यहां पे भी झगड़ा हुआ और उस समय देवतागण चिंतित हो गए कि अब क्या होगा, अभी हमारे हाथों से अमृत चला गया, असुरगण अमृत का पान करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो उस समय विष्णु ने देवताओं की बात सुनी और कहा, चिंता नहीं करो, मैं मेरी योग शक्ति का प्रयोग करूंगा। और उस समय भगवान ने अपना और एक विशेष अवतार धारण किया, और ये कौन सा अवतार है, मोहिनी मूर्ति। तो देखिए इस लीला में भगवान ने कितने रूप धारण किए, सबसे पहले अजित, उसके बाद में कूर्म अवतार, उसके बाद में वही अजित ऊपर जाके वो बैठे वहां विराजमान हुए मंदर पर्वत के ऊपर, उसके बाद में धन्वंतरी, और उसके बाद में मोहिनी मूर्ति, इतने सारे अवतार एक ही लीला में, बहुत विशेष बात है ये। तो खैर मोहिनी मूर्ति आई एक स्त्री रूप में, भगवान का अवतार स्त्री रूप में, जब भगवान पुरुष होकर आते हैं तो कितने आकर्षक होते हैं, तो भगवान स्त्री रूप में आएंगे तो सबसे आकर्षक तो होंगे ही, ये तो स्वाभाविक है। तो मोहिनी मूर्ति का सौंदर्य इतना अद्भुत था कि सारे असुरगण आश्चर्यचकित रह गए, उनका जो भी आपस में झगड़ा था वो बिल्कुल बंद हो गया, और वो कहने लगी, आप कौन हैं, कहां से आए हैं। तो तो मोहिनी मूर्ति ने बड़े सुंदर मधुर वाणी से उनसे वो कहने लगी कि आप तो बड़े वीर शूर हैं, अगर आप चाहें तो मैं इस मामले को निपटा सकती हूं। तो असुर ने कहा, हाँ आप ही ये कुंभ ले लीजिए और आप तय कीजिए कि इसका वितरण कैसे होना चाहिए। तो मोहिनी मूर्ति ने कहा कि देखो मेरे ऊपर विश्वास मत करना आप। लेकिन मोहिनी मूर्ति के सौंदर्य से इतने मोहित हो गए थे असुर कि उन्होंने कहा नहीं नहीं ये कुंभ ले लीजिए, आप ही सब कुछ कर लीजिए। जिस अमृत के लिए आपस में वो एक दूसरे से झगड़ रहे थे, उस अमृत को कितने आसानी से उन्होंने एक क्षण में मोहिनी मूर्ति को दे दिया। और फिर मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को की एक पंक्ति बनाई और असुरों को और एक पंक्ति उनकी बनाई और कहा असुरों से कि देखो ये देवतागण जो हैं बड़े लालची हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा मैं देकर आती हूं और फिर आपके पास बाकी पड़ा अमृत आप जी भर के पी सकते हो। वैसे भी आप शूरवीर हो और आप ये स्वीकार किया है कि मैं जो भी निर्णय लूंगी वो आप स्वीकार करेंगे। तो असुर ने कहा ठीक है देवताओं को लेने दो थोड़ा थोड़ा। तो मोहिनी मूर्ति के माया जाल से सारे असुर बिल्कुल भ्रमित हो गए थे। तो अब मोहिनी मूर्ति गई धीरे धीरे से एक एक देवता को अमृत का पान कराने लगी। लेकिन असुरों में से एक असुर थे जो कि बहुत चतुर थे, वो समझ गए कि ये भगवान विष्णु हैं और ये इनकी चाल है। तो तुरंत अपना वेश बदलकर सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच में जाकर बैठ गए। हालांकि उनको उस साइड में बैठना था लेकिन आकर इन देवताओं के बीच में बैठ गए। और उस समय मोहिनी मूर्ति अमृत देती जा रही थी सबको एक एक करके। लेकिन जब तक चंद्रदेव और सूर्यदेव को पता चला कि ये राहु है हमारा दुश्मन, तब तक अमृत का पान हो गया था। तो उन्होंने जल्दी से मोहिनी मूर्ति को कहा कि ये तो राहु है हमारा शत्रु है। तो तुरंत मोहिनी मूर्ति ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और राहु की गर्दन काट दिया। गर्दन तो काट दिया और अमृत नीचे नहीं जा पाया लेकिन अमृत मुंह में तो था। जब तक मुंह में था और गले में गया, गले में जाने के पहले ही गर्दन काट दी थी। लेकिन क्योंकि अमृत मुंह में था तो उनका मुंह जो है वो जीवित रह गया और इसलिए आज भी वो चंद्रमा के सामने आके ग्रहण करता है। राहु और केतु ये दो हैं। तो इस तरह से मोहिनी मूर्ति ने सब देवताओं को अमृत का पान कराया और फिर वो गरुड़ के ऊपर सवार होकर निकल पड़े भगवान। उस समय असुरों को पता चला कि अरे ये क्या हो गया है। और तुरंत जब होश ठिकाने आ गए कि हम तो इन्होंने धोखा दे दिया हमें, तो तुरंत बहुत क्रोधित होकर आक्रमण करने लगे देवताओं के ऊपर। अब देवतागण तो बड़े शक्तिशाली हो गए थे और क्योंकि अमृत का पान किया था उन्होंने, तो धुआंधार युद्ध हुआ वहां पर। लंबे समय तक युद्ध चला। ऐसा युद्ध कि रोंगटे खड़े हो जाने वाला युद्ध था। पढ़ते समय ही ऐसे लगता है। बहुत लंबा विवरण है भागवत में, पूरा वर्णन करने के लिए आज समय नहीं है। आप 8वें स्कंद में पढ़ सकते हैं इसका विवरण। खैर जैसे जैसे युद्ध चलता रहा, इंद्रदेव के पुत्र जयंत उन्होंने चुपके से अमृत का कुंभ चोरी कर लिया और भाग गए स्वर्गलोक की ओर। और जैसे ही असुरों ने देखा कि जयंत ऐसे निकल गए हैं तो तुरंत उनका पीछा करने लगे। यहां युद्ध चलने जा रहा था और जयंत के साथ में उनकी रक्षा करने के लिए 4 और देवता थे। तो जहां भी ब्रह्मांड में वो जाते थे असुर उनका पीछा पीछा करते थे। इस तरह से जब तक युद्ध चला तब तक जयंत घूमते फिरते रहे सारे ब्रह्मांड में। सारा युद्ध देवताओं की गणना से 12 दिन तक चला। वो 12 दिन देवताओं का एक दिन यहां पृथ्वी लोक पर एक साल होता है। इसका मतलब है कि यहां 12 साल बीत गए थे। और क्योंकि असुरगण पीछा कर रहे थे तो जयंत जहां भी दौड़ते थे कभी कभी रुक जाते थे, लेकिन फिर से जब असुर आ जाते थे उनको कुंभ उठाकर फिर से भागना पड़ता था। तो ऐसे पृथ्वी लोक के ऊपर 4 बार जयंत रुके। पहली बार जब रुके तो वहां प्रयाग नाम के जगह में, जो आज इलाहाबाद कहते हैं, फिर नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, इन 4 स्थानों पर वो रुके। कुंभ को नीचे रखा और जब समय आया कि उनको फिर से कुंभ लेके भागना था तो इधर थोड़े बूंद अमृत के नीचे गिर गए और वही समुद्र मंथन का अमृत अभी इन चार जगहों में आ गया। कई शास्त्रों में यह भी बताया जाता है, थोड़ा अलग सा वर्णन है, अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीलाएं होती हैं, कि गरुड़ वास्तव में लेकर गए, विष्णु भगवान ने यह कुंभ जो है गरुड़ को दे दिया कि तुम लेके भाग जाओ। गरुड़ भी अमृत का पान करना चाहते थे, वो अपने माता को देना चाहती थी जो कि बंदी थी, ये भी एक और लीला है। तो खैर गरुड़ जी जब आए तो वो भी कुंभ लेकर आए और यही चार जगहों पर अमृत गिरा, अमृत के बूंद गिरे। तो इस तरह से इन चार जगहों में जहां वही अमृत गिर गया था, इन चार जगहों में यह कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि वही अमृत जिसका मंथन करके उत्पादन किया था देवताओं ने असुर में, जब ग्रहों का कोई एक विशेष एक स्थिति हो जाती है या उनका योग हो जाता है तो वही अमृत प्राणवायु प्राण के रूप में आकाश से उन राशियों से आके यहां इन जगहों में प्रवेश कर लेता है। और इसलिए ये अमृत का फायदा वहां स्नान करने से मिल जाता है। उज्जैन ये शिप्रा नदी के तट पे है, नासिक गोदावरी के तट पे है और हरिद्वार गंगा जी के तट पे है, लेकिन प्रयाग ये गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है, इसलिए ये प्रयाग का महत्व दुगना है, बल्कि बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे प्रयागराज कहते हैं, तीर्थराज, तीर्थों में से बहुत सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ। प्रयाग मतलब क्या है? याग मतलब यज्ञ। प्रयाग मतलब जहां बहुत अच्छी तरह से यज्ञ किया जाता है। तो ऐसे गंगा जी के तट पर 14 प्रयाग हैं। आप में से जो बद्रीनाथ गए होंगे आपने देखा होगा रास्ते में कई ऐसे प्रयाग होते हैं, जैसे रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग इत्यादि। तो ऐसे कुल मिलाकर गंगा जी के तट पर 14 प्रयाग हैं, जिनमें से इलाहाबाद यानी प्रयाग जो त्रिवेणी संगम पर है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसे प्रयागराज कहते हैं या तीर्थराज प्रयाग कहते हैं, क्योंकि यहां पर इन तीन पवित्र नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। प्रयाग का एक प्राचीन इतिहास है। बताया जाता है कि जब ये समुद्र मंथन से विष हालाहल उत्पन्न हुआ तो सारे ब्रह्मांड में इसका प्रदूषण फैल गया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ब्रह्मांड के शुद्धिकरण के लिए मुझे कोई यज्ञ करना चाहिए, तो कोई उचित स्थान ढूंढ रहे थे ब्रह्मा जी। आखिर में वो पृथ्वी लोक पर आए और उन्होंने देखा कि ये भूमि जो कि गंगा सरस्वती और यमुना से घिरी हुई है ये बहुत योग्य है यज्ञ के लिए, इसलिए उन्होंने इस भूमि को चुन लिया। गंगा और यमुना जी के बीच में जो भूमि है वो पृथ्वी माता का कमर कहलाता है, बीच का हिस्सा। तो ये जगह को वेदी कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस स्थान को चुना था बड़े यज्ञ करने के लिए। ऐसे कुल मिलाकर 5 वेदी बताए जाते हैं शास्त्रों में, कुरुक्षेत्र, गया, विरजा और पुष्कर और प्रयाग, ये 5 स्थान है और बीच वाला स्थान है प्रयाग। तो इस तरह से ये 5 वेदियों में से प्रयाग सबसे महत्वपूर्ण है। बताया जाता है शास्त्रों में कि प्रयाग धाम के भीतर प्रवेश करने से ही सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं और हम बहुत जल्दी से शुद्ध हो जाते हैं इस धाम में, क्योंकि सारे तीर्थों में से सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। प्रयाग का महत्व शास्त्रों में और कई जगह दिया हुआ है, लेकिन इसका वर्णन करने के लिए आज हमें ज्यादा समय नहीं होगा। लेकिन जहां तक त्रिवेणी संगम का सवाल है, प्रयाग का महत्व इसमें रहता है, क्योंकि जब सूर्य देव और चंद्र देव का योग होता है दोनों जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसी समय जब गुरु ग्रह या बृहस्पति ग्रह जब वो मेष राशि में या वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं एक साथ में, तब उस समय माघ के महीने में वही समुद्र मंथन का अमृत यहां इस त्रिवेणी संगम में आ जाता है। इसलिए बताया जाता है कि उस शुभ तिथियों पर स्नान करने से हमें उस अमृत का फायदा लाभ मिल सकता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, केवल स्नान करने मात्र से कितना लाभ मिलता है, और ऐसे त्रिवेणी संगम में स्नान करने से हजारों हजारों गायों का दान करने का फल 3 दिन में मिल जाता है, हजारों हजारों अश्व पूर्ण हो जाती हैं। आपको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, स्वर्ग मिल जाएगा। आपको कोई विश्व का राज करना है, वो मिल जाएगा। आपको मुक्ति चाहिए, वो भी मिल जाएगी। सारी वांछाओं की पूर्ति हो जाएगी केवल त्रिवेणी संगम में माघ के महीने में वहां स्नान करने से, जब कुंभ मेला वहां पर होता है। और यहां तक बताया जाता है कि ये इतना शुभ समय है, इतना शुभ स्थान है कि सारे अन्य तीर्थ स्थान मूर्तिमान रूप में आकर वहां स्नान करते हैं त्रिवेणी संगम में कुंभ मेला के समय। जितने भी ब्रह्मांड में तीर्थ स्थान हैं सब आते हैं यहां पर, सारे देवी देवता आते हैं, सारे ऋषि मुनिगण आते हैं। पहले सतयुग में वो साक्षात आते थे, सब उनको देख सकते थे, लेकिन कलयुग में वो अदृश्य रूप में आते हैं, चुपके से आते हैं, स्नान करके चले जाते हैं और साधारण इंसान उनको नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में इस कुंभ स्नान योग के समय स्नान करना, इसका महात्म्य बहुत बताया हुआ है शास्त्रों में। इस तरह से शुद्धिकरण करने के लिए लाखों लाखों करोड़ों लोग आते हैं। सारे विश्व में ऐसा कोई सम्मेलन या ऐसा कोई समारोह नहीं होगा जहां पे इतने सारे लोग एक समय आते हैं। इतिहास में शायद ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। कुंभ मेला है ये, अलग अलग तरह के साधु वगैरह आते हैं। इतिहास में प्रयागराज की यात्रा भगवान ने हर एक अवतार में की है। जब प्रभु रामचंद्र जी वनवास में गए तो अयोध्या से बाहर निकलने के बाद पहला जो उनका स्टॉप था वो भरद्वाज मुनि का आश्रम था, जो कि प्रयाग के थोड़ा सा बाहर था। वहां पे थोड़ा समय रहकर फिर प्रभु रामचंद्र जी सीता देवी और लक्ष्मण के साथ में आगे चले चित्रकूट, और लंका से लौटते समय भी प्रभु रामचंद्र जी प्रयागराज में रुके थोड़ा समय। उसके बाद में बलराम जी भी जब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, तो वो तीर्थ यात्रा में गए, अलग अलग जगहों में जाकर नैमिषारण्य में आए, वहां रोमहर्षण की हत्या कर दी। उसके बाद में सरयू नदी के तट पर चलते चलते वो प्रयागराज आए और वहां पे उन्होंने स्नान किया, कई धार्मिक क्रियाएं किए। उसी तरह से 5 पांडव जब वो भी वनवास में थे तो वो भी यहां पर प्रयागराज में आए थे, उन्होंने भी स्नान किया था। नित्यानंद प्रभु जब वो मथुरा जा रहे थे वो भी यहां प्रयाग में रुके थे, यहां स्नान किया था उन्होंने। अद्वैत आचार्य भी वाराणसी जाते थे जा रहे थे तो वो भी रुके यहां। बाल सर मुंडवालिया यहां उन्होंने कई क्रियाएं किए, धार्मिक क्रियाएं। और चैतन्य महाप्रभु भी 2 बार यहां पर आए। जब वो जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे पहली बार तो 3 दिन वहां रुके, बिंदु माधव मंदिर में भगवान विष्णु का दर्शन किया, त्रिवेणी संगम में स्नान किया और लगातार हरिनाम संकीर्तन किया और वहां के लोगों को प्रेम के सागर में डुबा दिया। फिर आगे वृंदावन चले और वृंदावन से लौट कर आए फिर से प्रयाग। जब लौट कर आए वहां से महाप्रभु, जो उस समय प्रयाग में माघ मेला चल रहा था, यह कुंभ मेला 12 साल में एक बार होता है, क्योंकि वो योग ऐसे ही होता है, क्योंकि जो सूर्य है वो हर एक राशि में 1 महीने में एक बार जाता है, लेकिन जो बृहस्पति ग्रह है ये 12 साल में एक बार एक राशि में आता है। और एक बात यह है कि जो युद्ध हुआ देवताओं का और असुरों का वो 12 साल चला, ये है वजह जिसकी वजह से कुंभ मेला हर 12 साल में होता है। लेकिन हर साल माघ महीने में एक माघ मेला चलता है और उस समय महाप्रभु वहां आए थे और माघ मेला में 10 दिन वहां महाप्रभु रहे। प्रयाग के बिल्कुल पास में ही त्रिवेणी संगम के पास में अपना निवास स्थान बनाया महाप्रभु ने और उस समय उन्होंने रूप गोस्वामी को 10 दिन लगातार दशाश्वमेध घाट पर शिक्षा दी। दशाश्वमेध घाट मतलब जहां ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे, इसलिए इसका नाम हुआ दशाश्वमेध घाट। रूप गोस्वामी को उन्होंने श्रीमद भागवत के बारे में समझाया, कृष्ण तत्व के बारे में समझाया, भक्ति क्या है इसके बारे में समझाया और फिर इस शिक्षा के आधार पर श्रील रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु और अन्य ग्रंथ उनकी रचना की। और इसके अलावा महाप्रभु ने वल्लभाचार्य से भी मुलाकात की। आगे चल के वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली और वहां के प्रमुख आचार्य बने और वो संप्रदाय जो राजस्थान और गुजरात में आजकल बहुत प्रचलित है वो विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य संप्रदाय के नाम से जानी जाती है। लेकिन महाप्रभु का और एक मुख्य काम था, एक कार्य जो उन्होंने किया प्रयाग में, कि उन्होंने 10 दिन में बहुत संकीर्तन किया। वहां बताया जाता है कि उस समय त्रिवेणी संगम में तीनों नदियों में पानी बहुत कम था तो बाढ़ नहीं थी, लेकिन महाप्रभु के नाम संकीर्तन की वजह से हरिनाम संकीर्तन और कृष्ण प्रेम का बाढ़ जो है सारे प्रयाग में आ गया और इस बाढ़ में सारे प्रयाग के निवासी बह गए। चैतन्य चरितामृत में ऐसे वर्णन आता है कि जब महाप्रभु बिंदु माधव के मंदिर में जा रहे थे भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए तो रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई अनुपम देख रहे थे दूर से कि हजारों हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई हंस रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई जमीन में लोट रहे हैं और कृष्ण कृष्ण कहके उच्चारण कर रहे हैं और महाप्रभु हाथ ऊपर करके सभी से कह रहे थे हरि का नाम लो, हरि का नाम लो और ऐसे वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किए जा रहे थे और कृष्ण प्रेम सब जगह वो बांट रहे थे। अब जैसे हमने पहले बताया कि प्रयागराज याग या यज्ञ की स्थली है जहां यज्ञ किए जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने यहां आकर संकीर्तन यज्ञ किया और उनके बाद आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को यह संदेश दिया कि यहां आकर सही यज्ञ यही है, कि हमें भी वहां जाकर केवल स्नान नहीं करना है, संकीर्तन यज्ञ करना है क्योंकि कलयुग के लिए यही युग धर्म है। इस तरह से महाप्रभु वहां थोड़े दिन रहे और चले गए। उसके बाद में प्रभुपाद जी 13 साल उनके गृहस्थ लीला में उन्होंने प्रयाग में बिताए, उन्होंने वहां दीक्षा भी ली 1932 में, 1928 में भी वहां कुंभ मेला हुआ था तो उस कुंभ मेला में भी प्रभुपाद जी शामिल हुए थे, उस समय वो गृहस्थ थे, दीक्षा नहीं हुई थी उनकी। और आगे चल के 1971 में वहां जब अर्ध कुंभ था तो प्रभुपाद जी वहां उनके शिष्यों को लेकर आए थे, विदेशी शिष्यों को, और फिर 77 में भी, सन 77 में भी वहां वो आए। तो ये कुंभ मेला के बारे में हम इतना सब सुन रहे हैं कि इसमें ये फायदा होता है, मुक्ति मिल जाती है, ये लाभ होता है, तो प्रभुपाद जी इसके बारे में क्या कहते हैं, भक्ति की दृष्टि से हमें यह कुंभ मेला को कैसे देखना चाहिए, यह महत्वपूर्ण बात है। जब यह बताया जाता है शास्त्रों में कि प्रयागराज में कुंभ मेला के समय स्नान करने से हमें मुक्ति मिल जाती है तो क्या इसका मतलब है कि हरेक व्यक्ति, करोड़ों करोड़ों व्यक्ति जो जा रहे हैं वहां पर, इनमें से हरेक व्यक्ति एक बार डुबकी लगाने से जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाएगा, क्या उसे पुनः जन्म नहीं लेना होगा? यह प्रश्न प्रभुपाद जी के सामने रखा भक्तों ने, तो प्रभुपाद जी ने समझाया कि वास्तव में ऐसा नहीं है कि केवल एक बार डुबकी लगाने से आदमी को जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मुक्ति का द्वार खुल जाता है। प्रभुपाद कहने लगे कि जैसे अगर आपको किसी कमरे में जाना है, अगर दरवाजा बंद होगा तो अड़चन होगी, आपको कठिनाई होगी अंदर जाने में, लेकिन दरवाजा खुला होगा तो आसानी से आप कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। तो उसी तरह से जब ऐसे हम पुण्य कार्य करते हैं जिसमें आध्यात्मिक लाभ होता है, सुकृति प्राप्त होती है, तो हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है, मुक्ति के पथ में चलना आसान हो जाता है। हृदय से थोड़ा एक प्रवाह मिल जाता है, एक धक्का मिल जाता है हृदय में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, वहां मुक्ति की ओर झुकाव हो जाता है, यह फायदा हो जाता है। ठीक उसी तरह से जगन्नाथ रथ यात्रा के संदर्भ में बताया गया है कि जो भी जगन्नाथ जी का रथ एक बार भी खींचता है वो मुक्त हो जाता है ना। हमारे भक्त जब जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रचार करने जाते हैं कि आप आइएगा, रथ खींचिएगा, एक बार खींचे मुक्त हो जाएंगे, तो कई लोग होते हैं उनको लगता है कि ये कैसे हो सकता है। तो यही बात है इसमें भी कि जब हम खींचते हैं हमारी भक्ति उन्मुख सुकृति होती है, कि सुकृति होती जिससे भक्ति बढ़ जाती है, और ऐसे सुकृति करने से भक्ति मार्ग में रुचि बढ़ जाती है, मुक्ति का मार्ग खुल जाता है हमारे लिए, शॉर्टकट मिल जाता है भगवान के धाम में जाने के लिए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने इसका सिद्धांत स्थापित कर दिया। एक बार एक अतिथि आए थे, लाइफ मेंबर, जीवन सदस्य, तो पूछने लगे कि प्रभुपाद जी हमें क्या प्रयाग में जाना चाहिए कुंभ मेला के समय? हाँ अवश्य जाना चाहिए, इसमें क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि आपको सत्संग मिलेगा, वहां कितने सारे साधु आते हैं, लेकिन इतने सारे लाखों लाखों लोग आते हैं, हाँ लेकिन इन लाखों लाखों लोग में कितने तरह के साधु होते हैं, कोई ब्रह्मवादी, कोई परमात्मावादी, कोई साधु, कोई वैरागी, कोई नागा, कोई ये कोई वो, कोई भक्त होते हैं, भले कोई भक्त न हो लेकिन कितने सारे साधु आते हैं जो भौतिक जीवन से परे हैं, तो ये साधु संघ हो जाता है, अच्छा है, यही हमारी संस्कृति है। तो वो सज्जन कहने लगे कि ये ठीक है, लेकिन सत्संग के अलावा खास इस समय पर जाने का, कुंभ मेला के समय पर जाने का कोई फायदा है क्या? हाँ अवश्य, हमें शुद्धिकरण होगा, और इस बात में हमें विश्वास रखना चाहिए कि जब हम वहां जाएंगे तो हमारे हृदय पापों से शुद्ध हो जाता है, हमारे हृदय में श्रद्धा बढ़ जाती है, तो हमें इसके बारे में संशय नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं रखना चाहिए। जो शास्त्र में बातें बताई जाती हैं उनको सत्य मानकर हमें स्वीकार करना चाहिए। जितना हम संशय करेंगे कि ये कैसे संभव है, एक बार डुबकी लगाने से हृदय में पाप नष्ट हो जाते हैं, श्रद्धा बढ़ जाती है, यही तो अद्भुत शक्ति है गंगा देवी की। बताया जाता है कि किसी भी पवित्र नदी में एक बार भी अगर कोई स्नान करता है तो बहुत शुद्धिकरण का लाभ होता है, और जब त्रिवेणी संगम ऐसे तीन नदियां मिलती हैं तो जो लाभ मिलता है वो 100 गुना ज्यादा होता है। और जब इस त्रिवेणी संगम में कुंभ मेला के समय जब स्नान योग होता है, उस समय स्नान करने से 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। तो इस तरह से हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि शास्त्रों में जो बताया है वो सही होता है। प्रभुपाद जी कहने लगे कि कुंभ मेला यात्रा करने का सही लाभ ये होगा कि वहां जाकर आप साधुओं के मुख से कुछ भगवान के बारे में बातें सुने, नहीं तो आपका कुंभ मेला व्यर्थ होगा। श्रीमद् भागवत का श्लोक उन्होंने प्रमाण के तौर से बताया, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचिच जनेश अभिज्ञेशु स एव गोखरः। कई तरह के लोग होते हैं संसार में। पहला आदमी वो होता है यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके, वो अपने आप को समझता है कि मैं ये तीन धातुओं का ही एक शरीर हूं, मैं शरीर हूं। तीन धातु मतलब कफ वात पित्त, मैं शरीर हूं। जो व्यक्ति ऐसे मानता है स एव गोखरः, वो एक पशु के बराबर है, गाय या एक गधे के बराबर है। ये भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवत में, जब कुरुक्षेत्र वो गए थे और वृंदावन के निवासी भी गए थे सूर्य ग्रहण के समय, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश किया था। और दूसरे श्रेणी के लोग वो होते हैं स्वधि कलत्रादिशु, जो अपने पत्नी को, पति को, बच्चों को, माता पिता को अपना समझते हैं कि ये मेरा कुटुंब है, ये मेरे हैं। जो ऐसा समझते हैं वो भी पशु के बराबर है, क्योंकि कौन अपना है कौन पराया है संसार में, ये कुटुंब क्या चीज है, मित्र कौन है शत्रु कौन है। और तीसरी बात भौम इज्जति, कि जो व्यक्ति सोचता है कि ये भूमि पूजनीय है इसलिए कि मेरा जन्म यहां हुआ, इसलिए मेरे भूमि पूजनीय है, वो भी पशुवृत्ति है। और अंततः यत तीर्थ बुद्धि सलिले, ये बुद्धि, ये धारणा कि जब हम सलिल या कोई पवित्र नदी में, कुंड में जाके तीर्थ स्थान में स्नान करेंगे, तो यही तीर्थ यात्रा में जाने का उद्देश्य है। ये ऐसा जो सोचते हैं वो भी पशु के बराबर है, गोखर है, गाय या गधे की तरह है। क्यों? क्योंकि तीर्थ स्थान में जाने का सही उद्देश्य ये होना चाहिए, लाभ ये होना चाहिए। जनेषु अभिज्ञेषु, जो लोग अभिज्ञ हैं, जिनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है, उनके मुखारविंद से हमें दो शब्द भगवान के बारे में सुनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, केवल स्नान करने जाएंगे, तो कोई लाभ नहीं होगा। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि कलकत्ता से लोग इलाहाबाद जाते हैं स्नान करने के लिए, जबकि गंगा कलकत्ता से थोड़े दूर से ही गुजरती है, लेकिन वो गंगा में नहीं जाते हैं, सोचते हैं कि वो गंगा कोई अलग गंगा है, इलाहाबाद में जाते हैं, गंगा तो वही है। क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि तीर्थ यात्रा का सही महत्व क्या होता है, कि साधुओं के मुखारविंद से भगवान के वचन सुनना। इस तरह से नाना प्रकार के लोग ऐसे अलग अलग धारणा लेकर जाते हैं। ऐसे प्रभुपाद समझाने लगे कि कुंभ मेला में हमें कैसे जाना चाहिए। तो प्रश्न ये आता है कि अगर हमें वहां जाकर साधुओं के मुख से सुनना है, तो कौन है वो प्रामाणिक साधु? आप में से जो कुंभ मेला गए हैं या कुंभ मेला के बारे में आप में जिन्होंने सुना है, आप जानते हैं कि अलग अलग तरह के, विविध प्रकार के साधु दिखाई पड़ते हैं वहां पर। कोई भीषण, दिखने में बड़े भयानक दिखते हैं, कोई ऐसे शरीर में राख लगाकर आते हैं, कोई ऐसे नागा बाबा होते हैं, वस्त्र नहीं पहनते, केवल त्रिशूल पहनकर जोर जोर से नारा लगाते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो कांटों पे, कांटों की शैया पर सोए हुए होते हैं, कोई ऐसे योगी होते हैं जो बड़े बड़े जटाएं डालकर आते हैं, लंबी दाढ़ी वगैरह, एक कौपिन पहनकर एक जगह खड़े रहते हैं, दिन दिन रात खड़े रहते हैं, हफ्ता एक महीना एक पैर पे कोई योगी खड़ा हो रहा है, तो कोई योगी हाथ ऊपर करके खड़ा हो रहा है और हाथ नीचे नहीं कर रहा है। ऐसे कई लोग हैं कुंभ मेला में, कई ऐसे भी साधु आते हैं। ऐसे साधु थे एक बार जो 18 साल तक बैठे नहीं थे, खड़े ही थे वो हमेशा, और जब नींद आती थी तो एक झूला था, तो झूला कहीं झाड़ पे लटका कर उससे ऐसा कमर लटका कि वो फिर ऐसे आराम करते थे, और उनके पैरों में सब पट्टियां लगी हुई थी, 18 साल से बैठे नहीं थे। पिछली बार जब हम गए थे 12 साल पहले कुंभ मेला में, तो वहां बहुत लाखों की संख्या में लोग एक ऐसे साधु के पास जा रहे थे जो एक पैर पे 12 साल खड़ा रह चुका था। अब 12 साल एक पैर पे खड़े रहना एक पक्षी करता है ना, तो हम पक्षी बन जाएंगे, तो ये बड़ी तपस्या तो है, लेकिन ये सच्ची तपस्या नहीं है, सात्विक तपस्या नहीं है। तो एक शिष्य ने ये पूछा प्रभुपाद जी से, ये सारे साधु इस तरह की तपस्या कर रहे हैं, ये तो वेदों में कहीं वर्णन नहीं है इसका। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ना है, किसने किया ऐसे? हिरण्यकश्यप ने किया। हिरण्यकश्यप भी अपने पैर पर खड़े थे, दोनों हाथ ऊपर, कितने हजारों सालों तक हाथ नीचे ही नहीं किया, सारा शरीर कीड़ों ने चींटियों ने खा डाला, कुछ रहा नहीं, प्राण केवल हड्डियों में घूम रहा था। सत्यु के समय ऐसे हुआ करता था, प्राण हड्डियों में घूमता फिरता था। आजकल प्राण अन्न में है, इसलिए अन्न के बिना हम नहीं रह सकते। तो हिरण्यकश्यप ने ऐसे तपस्या की, और ऐसे तपस्या के फल स्वरूप क्या बने? वो सबसे बड़े राक्षस बने, और राक्षस बनकर क्या हुआ? उनकी मृत्यु हुई। तो उसी तरह से ऐसे तामसिक तपस्या करने से आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। हालांकि ये लोग भौतिक भोग में नहीं लगे हुए हैं, ये लोग भी साधु हैं, लेकिन फिर भी ऐसे योगियों से हमें संग नहीं करना है। तो प्रभुपाद कहने लगे कि ऐसे कई अप्रामाणिक साधु आते हैं, लेकिन कई प्रामाणिक योगी भी होते हैं। प्रभुपाद कहने लगे, उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं देखा है ऐसे योगी होते हैं जो कि 7 पवित्र नदियों में एक ही दिन में तीर्थ यात्रा करके आते हैं। बताया जाता है कि भारतवर्ष में 7 प्रमुख पवित्र नदियां हैं। हर नदी पवित्र है वैसे देखा जाए तो, लेकिन इनमें से प्रमुख 7 हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। जब हम आचमन जल बनाते हैं हमारी पूजा के लिए तो ये मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिसे हम आह्वान देते हैं कि सारे 7 पवित्र नदियों का जल आके यहां कृपा करके आप इसमें इसको पवित्र कीजिए, इस जल को। तो प्रभुपाद कहते थे कि एक बार यहां गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो गोदावर में बाहर आएंगे, फिर गोदावर में डुबकी लगाएंगे नर्मदा में बाहर आएंगे, नर्मदा में डुबकी लगाएंगे फिर सिंधु में ऊपर आएंगे। ऐसे 7 नदियों में डुबकी मार के स्नान करके फिर वो जाते थे, और कोई साल भर कोई उनको देखता नहीं था कि वो कहां है। एक बार कुंभ मेला के समय 1 महीना आते थे, बाकी गायब हो जाते थे कहां अपने अपने स्थान में। तो प्रभुपाद कहने लगे ये सब योगी भी हैं, ये प्रामाणिक योगी उनके दृष्टि से हैं, तो 300 साल 400 साल उनकी उम्र होती है, लेकिन भक्तों को ऐसे योगियों से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें स्वर्गलोक नहीं चाहिए, हमें विश्व का राज नहीं चाहिए। क्यों हमें मुक्ति नहीं चाहिए? क्योंकि हम लोग कृष्ण भक्त हैं, हम तो पहले से मुक्त हो चुके हैं। यह सही बात है, कृष्ण भगवान ने भी भगवद गीता में बताया है, माम च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि जो बिना पतन हुए भक्ति मार्ग में लगा रहता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहता है, वो मुक्त हो चुका है। इसलिए प्रभुपाद कहने लगे जो कृष्ण भक्त होता है वो मुक्त हो चुका होता है, उसे प्रयागराज में जाकर मुक्ति के लिए स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर प्रभुपाद जी क्यों जाया करते थे अपने भक्तों को लेकर? उन्होंने ऐसे आदेश क्यों रखा कि मेरे बाद में भी भविष्य में हमारे सारे संस्था के भक्त वहां जाकर बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा हम यहां तीर्थ यात्रा के लिए नहीं आए हैं, हम यहां प्रचार के लिए आए हैं, हम यहां लोगों को बताने आए हैं कि श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण की भक्ति क्या है, और यहां जो उन राशियों से जो अमृत आता है शुभ घड़ियों में जब कुंभ योग स्नान होता है, तो वो अमृत में भी हमें कोई रुचि नहीं है, हमें कृष्ण नाम के अमृत में रुचि है, कृष्ण भक्ति के अमृत में हमें रुचि है, ये अमृत उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है, और सच्चा अमृत जीवन हमें तब मिलेगा जब हम कृष्ण भक्त बन जाएंगे, क्योंकि मृत्यु के बाद हम भगवान श्री कृष्ण के धाम में लौट कर जाएंगे और यहां लौट कर नहीं आएंगे फिर से। इस तरह प्रभुपाद जी ने समझाया कि हमें केवल सेवा की दृष्टि से, प्रचार की दृष्टि से वहां पर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये भी नहीं समझना चाहिए कि यह बिल्कुल भौतिक या साधारण है। नहीं, भक्ति के लिए इसका लाभ भी हो सकता है, इसलिए हमें इसका फायदा उठाना भी चाहिए। वैसे देखा जाए तो गंगा जी चरणामृत है, क्योंकि गंगा जी के जल का स्पर्श भगवान के चरण कमलों से हुआ था वामन देव की लीला में। गंगा जी पहले तो केवल स्वर्ग लोक में, ऊपर के लोकों में वो बहती थी, लेकिन राजा भगीरथ के निवेदन पर उन्होंने स्वीकार किया कि वो धरती लोक पर भी आ जाए, और इस तरह से गंगा जी का स्पर्श जो करता है वो भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। और यमुना जी वो तो है सूर्य देव की पुत्री, यमराज और शनि के बहन, क्योंकि यमराज जी सूर्य देव के पुत्र हैं, इसलिए कभी कभी यमी भी कहते हैं यमुना जी को। और यमुना जी वो तो श्री कृष्ण के पत्नी भी हैं, और साथ साथ श्री कृष्ण लीला में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वृंदावन में जब कृष्ण भगवान लीला करते हैं तो यमुना में जाकर जल क्रीड़ा करते हैं। कालिया दमन लीला भी यमुना जी के जल में हुआ और नाव लीला वहां भी, स्नान यात्रा भी वहीं पर हुई। तो ऐसे यमुना जी में हर रोज आया करते थे भगवान श्री कृष्ण। तो यमुना जी भी बहुत पवित्र है और सरस्वती देवी भी बहुत पवित्र है। ये तीनों नदियां हिमालय में ऊपर में पहले मिलती हैं और जब तक वो प्रयाग में आते हैं केवल यमुना जी और गंगा जी दिखाई पड़ती हैं और सरस्वती अदृश्य रूप में है। केवल 100 किलोमीटर दरमियान ऊपर उत्तर भारत में सरस्वती नदी दिखाई पड़ती है लेकिन बाद में अदृश्य हो जाती है। लेकिन फिर भी हमें जानना है कि सरस्वती नदी जमीन के नीचे से बह रही है। गंगा जी का रंग जो है वो सफेद है और यमुना जी का रंग सांवला है कृष्ण जैसा। और ये संगम जब होता है प्रयागराज में तो एक अद्भुत बात हो जाती है कि यमुना जी का जल गंगा जी के जल से मिल जाता है, फिर वो गंगा हो जाती है लेकिन यमुना जी का रंग खत्म हो जाता है वहां, फिर गंगा जी का रंग ही रह जाता है, सफेद रंग हो जाता है। और इस तरह से आगे गंगा सागर की ओर जाकर फिर वो समुद्र से वो पानी मिल जाता है। तो इस तरह से प्रयागराज में स्नान करने का लाभ तो अवश्य है, लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है, श्रील प्रभुपाद जी ने सिखलाया है, सच्चा लाभ तो हमें कहीं भी मिल सकता है अगर हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण के सेवा में रहें, उनके पवित्र नामों का उच्चारण करते रहें, उनकी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते रहें, उनके भक्तों के संग में आकर। तो ये भी तीर्थराज ही है क्योंकि यहां भगवान श्री कृष्ण की कथा चल रही है, आप श्रद्धा से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसलिए यह तीर्थराज गोकुलानंद मंदिर हो गया है, तिलकवाड़ी भी धाम बन गया आप सबकी वजह से, क्योंकि आप सब इतनी अच्छी तरह से यहां श्री श्री राधा गोकुलानंद की सेवा कर रहे हैं। इतना श्रद्धा, आपके श्रद्धा के बल पर, आपकी सेवा भावना के बल पर यह भी एक धाम बन चुका है। इस तरह से हमें प्रयागराज का महात्म्य समझना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आपकी कोई टीका टिप्पणी प्रश्न इत्यादि?
ये जो बताया गया कि 12 साल में एक बार कुंभ मेला होता है तो ये अर्धकुंभ भी जो है वो 6 साल के बाद आती है
जी,
उसका भी उतना ही महत्व है या कैसा क्या?
अर्धकुंभ का महत्व तो अवश्य है लेकिन उतना नहीं जितना पूर्ण कुंभ का है। पूर्ण कुंभ में जो ग्रहों की अपेक्षित स्थिति होती है वो बहुत शुभ और विशेष होती है और वो अपेक्षित स्थिति ग्रहों की वो अर्धकुंभ में उतना नहीं होता। जैसे यहां जब प्रयाग में पूर्ण कुंभ होता है तो जैसे हमने बताया सूर्य और चंद्र का योग होता है और वो भी मकर राशि में, और उसके पश्चात गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह वो मेष राशि में प्रवेश करता है या तो कभी कभी वृषभ राशि में भी। तो ये जो एक अपेक्षित स्थिति है ये केवल 12 साल में एक बार आता है तो इसका विशेष महत्व रहता है और इस समय वही आकाश से अमृत इस त्रिवेणी संगम में मिल जाता है। अर्धकुंभ समय भी लाभ है और जो हर साल वार्षिक जो माघ मेला होता है उसमें स्नान करने से भी विशेष लाभ है। दर इस बार जो हुआ वो भी और भी विशेष था, 12 कुंभ मेला में एक था ये इस बार का जो महाकुंभ मेला हुआ प्रयाग में। और कोई प्रश्न किसी के?
जैसे अभी प्रयागराज में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, वहां पे अपने सारे पापों को वहां पे छोड़ रहे हैं, अभी प्रयागराज उन पापों को क्या करेंगे और कहां पे उन पापों को धोएंगे?
ये कथा तो श्रीमद् भागवत में आती है गंगा जी के अवतीर्ण के समय, जब गंगा जी कहती हैं कि हे भागीरथ भागीरथ राजा आप मुझे बुला रहे हो नीचे आने के लिए लेकिन मैं जानती हूं कि ये सारे पृथ्वी के पापी लोग आके मुझ में स्नान करेंगे, उनका पाप आके मुझ में डाल जाएंगे और मैं इस बोझ को स्वीकार ग्रहण नहीं कर पाऊंगी। तो भगीरथ राजा ने क्या जवाब दिया, इसके बारे में चिंता मत कीजिए, ऐसे बहुत महान वैष्णव हैं जो आके आपके जल में स्नान करेंगे और उस जल को पवित्र कर देंगे, है ना, तो आपके ऊपर बोझ नहीं आएगा, तो आप चिंता नहीं कीजिए। इस तरह से प्रयागराज को भी शुद्ध करने वाले हैं सब कृष्ण भक्त वैष्णव।
पावन सरोवर में जाते हैं, वो बात सही है,
भगवान श्री समय नहीं था, नहीं तो और कई लीलाएं सुनाते, कृष्ण लीला भी ऐसे कितने ही लीलाएं हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी इत्यादि वो अलग अलग अवसर पे इन सारे तीर्थ स्थानों का या पवित्र नदियों का आह्वान करते हैं और वो आते हैं वहां पर। इसलिए वृंदावन में ऐसे पावन सरोवर में, मानसी गंगा में, राधा कुंड में, श्याम कुंड में स्नान करने से सारे तीर्थ स्थानों का लाभ एक जगह मिल जाता है। प्रयागराज भी वहां मूर्तिमान स्वरूप आके वहां नमस्कार करते हैं, वो भी तुरंत आकर वहां पे रह जाते हैं, ठीक है। इसलिए कृष्ण भक्त के लिए वृंदावन मायापुर ये काफी है। पीछे
अभी इन्होंने जो प्रश्न पूछा कि गंगा जी को भगीरथ राजा ने उत्तर दिया कि भाई वो सब शुद्ध भक्त संत जब आगे स्नान करेंगे तो पाप सारे, तो क्या वो सारे पाप शुद्ध भक्तों के ऊपर आ जाते हैं?